नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्यार्णम् नमो उवच्छायार्णम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज सातवा पाठ मरण का समझेंगे। मरण किसे कहते हैं और उसके भेद कितने हैं? मरण का तात्पर्य आयु कर्म के क्षय होने पर शरीर से आत्मा का वियोग होना मरण कहलाता है। आयु कर्म पेट्रोल के समान है और आत्मा गाड़ी के समान है। जैसे पेट्रोल समाप्त होने पर गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही आयु कर्म समाप्त होने पर आत्मरूपी गाड़ी रुक जाती है। पूर्व शरीर को त्याग कर उत्तर शरीर को ग्रहण करने के लिए नया आयु कर्म रूपी पेट्रोल को भरकर नया शरीर ग्रहण करने हेतु आत्मा दूसरी गति के लिए गमन कर जाती है। मरण आयु कर्म के संबंध से होता है। आयु कर्म यदि है तो जीवन है। व्यक्ति आयु कर्म से ही जीवन भर जीवित रहता है। ये भी एक कर्म है आयु, जो जीने में सहयोग देता है। जितनी आयु होती है उतने समय के लिए हम इस शरीर में बंधित रहते हैं। जैसे किसी अपराधी व्यक्ति को बंधन में डाल करके, जेल में डाल करके रखा जाता है और अवधि सुनाई जाती है कि इतने साल तक जेल में रहना है, उसी प्रकार आयु कर्म भी चार गतियों में से जो जीव रहते हैं उन जीवों का जो शरीर होता है उस शरीर में यह बंधित कर देता है या गति में बंधित कर देता है, यह कह सकते हैं। गति में डाल देता है। किस गति में? नरक गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। गति में डाल करके उतने उतने समय के लिए, जितनी की वह आयु कर्म का पेट्रोल है उतने समय के लिए वहां रखता है और वह पेट्रोल समाप्त होते ही गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसी को मरण कहते हैं। आयु कर्म के संयोग से जीवन मिलता है और वियोग से मरण होता है। आत्मा अनादि है, अनादि काल तक रहेगा, उसका विनाश तो होता ही नहीं, किंतु जब तक यह संसार में है आत्मा, तब तक आयु कर्म का संयोग होना वियोग होना, संयोग होना वियोग होना, ये चलता रहता है। इसके बीच में हम जन्म और मरण करते रहते हैं। मोक्ष जाने के बाद इस आत्मा को न जन्म लेना पड़ता है न मरण करना पड़ता है, जन्म मरण होता ही नहीं। जैन शास्त्रों में मरण के तीन प्रकार बताए गए हैं, च्युत मरण पहले नंबर का, चावित मरण दूसरे नंबर का और त्यक्त मरण तीसरे नंबर का। अभिप्राय यह है, कोई भी जीव मरण करता है तो इन तीन प्रकार में से एक प्रकार के मरण से मरता है। समझते हैं ना, च्युत मरण, चावित मरण, त्यक्त मरण। त्यक्त च्युत चावित और त्यक्त। च्युत मरण का अभिप्राय है स्वाभाविक मरण, च्युत मरण यानी स्वाभाविक मरण, जो स्वाभाविक रूप से जीव मरते ही हैं, मरण करते हैं। इस मरण को च्युत मरण कहते हैं। चावित मरण शस्त्र आदि के द्वारा मरना, विष पी करके, शस्त्रघात करके, जल करके, कूद करके अपने आप का घात करना, ये चावित मरण कहलाता है। चावित चारित्र नहीं, चावित चावित मरण। तीसरा है त्यक्त मरण, त्यक्त त्यक्त समाधि मरण द्वारा प्राप्त होने वाला मरण, समाधि मरण की साधना से जो मरण किया जाता है उसको त्यक्त मरण कहते हैं। इसी त्यक्त मरण के तीन भेद होते हैं, भक्त प्रत्याख्यान पहले नंबर का, भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान दूसरा है इंगिनी मरण, तीसरा प्रायोपगमन मरण। प्रायोपगमन मरण, प्रायोपगमन, इन तीनों का कथन इसमें है पाठ में। संसार का हर प्राणी मरण तो करता है, मरना ही पड़ता है, और मरण करता है तो फिर जन्म भी लेना पड़ता है। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है, वर्तमान का आयु कर्म समाप्त होता है तो दूसरे की तैयारी यहीं से कर लेता है, दूसरे भव की तैयारी यहीं से करता है, यहीं आयु कर्म को बांध लेता है, फिर गमन करता है। मनुष्य गति में त्रिभाग में तैयारी करता है, मनुष्य गति में मनुष्यायु का जो त्रिभाग है, बताया था एक बार, त्रिभाग में आगामी भव की आयु को तैयार करता है, यानी बांध लेता है। देवगति में आयु के अंतिम 6 महीने बचने पर, नरक गति में भी आयु के अंतिम 6 महीने बचने पर आगामी आयु का बंध होता है। भोग भूमि में भी अंतिम 6 महीने बचने पर आगामी आयु का बंध होता है। भोग भूमि में, देवगति में, नरक गति में, तीनों में आगामी 6 माह का बचने पर। किंतु कर्म भूमि में आयु का 2 भाग समाप्त होकर तीसरा भाग जब बचता है, उसमें 8 अपकर्ष काल आते हैं, उसमें से 1 में बांध लेता है। उसको बताया था 8 अपकर्ष काल कैसे। आठ अपकर्ष काल कैसे बताया था वो समझ में आ गया होगा। 3-3 भाग करते जाना है, हाँ, उसमें तीसरे भाग में ये 8 अपकर्ष काल है। अब ये है कि जहां पर अकाल मरण नहीं होता, उन गतियों में मोक्ष नहीं होता। जहां पर अकाल मरण नहीं होता वहां पर मोक्ष नहीं होता। जैसे देवगति में अकाल मरण नहीं, मोक्ष भी नहीं। नरक गति में अकाल मरण नहीं, मोक्ष नहीं। तिरंज गति में अकाल मरण भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। ये कर्म भूमि में, कर्म भूमि के जीवों को अकाल मरण भी है और मोक्ष भी है। मोक्ष एक अच्छी चीज है, प्राप्त करना चाहता है जीव, लेकिन मोक्ष से पहले अकाल मरण ही हो गया तो मोक्ष की साधना नहीं कर पाएगा। अब ये है, आगे के प्रसंग को देख लेते हैं। मरण के 6 जब मरता है तो परिणामों के आधार से, उसकी क्रियाओं के आधार से, उसके भावों के आधार से, मरते समय कैसे भाव रहे, कौन सा गुणस्थान रहा, गुणस्थान के आधार से यहां पर मरण के फिर 5 भेद किए गए। 5 भेद, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, ये 5 भेद मरण के हैं। ऊपर के जो 3 भेद थे वो अलग, जो स्वाभाविक रूप से होता है उसको च्युत कहा, जो शस्त्र आदि के द्वारा होता है उसको चावित कहा, और जो समाधि मरण पूर्वक होता है उसको त्यक्त कहा, त्यक्त। अब यहां ये तो सामान्य हो गए, परंतु इन मरणों को करते समय जीव के जो परिणाम हैं, भाव हैं, गुणस्थान हैं, उसके आधार से जीव के मरण को तय किया जाता है कि इसका कौन सा मरण हुआ। इन पांचों के माध्यम से तय किया जाएगा। बाल बाल मरण किस आधार से तय करेंगे कि इस जीव का बाल बाल मरण हुआ? तो सम्यक तो रहित गुणस्थान पहले में और दूसरे में, मरण करने वाले चारों गति के जो बहिरात्मा जीवों का मरण होता है उसको बाल बाल मरण कहते हैं। बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि, अंतरंगात्मा यानी अंतरात्मा यानी सम्यक दृष्टि। बहिरात्मा का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि और अंतरात्मा का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। आत्मा के तीन भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि को कहते हैं और परमात्मा भगवान है, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, ये दोनों भगवान हैं। बाल बाल मरण किसको होता है? मिथ्या दृष्टि जीवों को। मिथ्या दृष्टि जीव किस गुण स्थान तक रहते हैं? पहले दूसरे में, तीसरे में सम्यक दृष्टि रहते हैं। मिश्र भी सम्यक तो रहित दशा है। मिश्र भी सम्यक तो रहित ही गुणस्थान। तो सम्यक तो के साथ मरना हो तो किस गुणस्थान से संभव? चौथे से। अब ये देखेंगे थोड़ा सा कि गुणस्थानों में मरण, एक बार बताया था शायद बहुत पहले, ऊपर क्लास लगती थी, मरण किन गुणस्थानों में है और किन गुणस्थानों में नहीं है, ये प्रश्न। पहले में दूसरे में मरण है, चौथे में मरण है, पंचम में भी मरण है, छः सात आठ नौ दस ग्यारह इन सब में मरण है। मरण कहां नहीं है? तो बीच में, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है, और इस गुणस्थान के साथ जन्म भी नहीं होता। मरण नहीं हुआ है तो जन्म भी नहीं होगा। ये हो गया। तो मरण के गुणस्थान हो गए एक दो चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। ग्यारह तक मरण कर सकता है जीव, बारहवें में मरण नहीं है, तेरहवें में मरण नहीं है, चौदहवें में मरण है लास्ट में। मोक्ष जाते समय मरण करना पड़ता है, मरे बिना मोक्ष भी नहीं मिलता, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मरे बिना नरक नहीं मिलता, मरे बिना मिलता है मरना ही पड़ता है। तो चौदहवें में मरण है, तो मरण के गुणस्थान कितने हो गए? एक एक दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 14, 11 गुणस्थान हो गई है। 14 में से 11 गुणस्थानों में मरण होता है, तीसरे में नहीं, बारहवें में नहीं, तेरहवें में नहीं, तीन गुणस्थानों में मरण नहीं। उस गुणस्थान में, उस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त यानी बहुत कम है, कम भी है, और उस गुणस्थान में रहने वाले जीव की आयु की समाप्ति होती ही नहीं, या तो नीचे आने पर या तो ऊपर जाने पर मरण होता है, ये उसका योग ही है। ये ऐसा योग क्यों, तो इसलिए कि गर्मी अप्रैल में ही क्यों पड़ती है, योग है वहीं पड़ेगी, ठंड में गर्मी नहीं पड़ेगी, बरसात में गर्मी नहीं पड़ेगी। जुलाई में ही, अगस्त में ही पानी बरसता है लगातार और एकदम गायब हो जाता है दो महीने के लिए, नवंबर दिसंबर में, ये भी नियोग है, कुछ प्रकृति के नियम है ये। इससे उस प्रकृति के नियम के अनुसार तीसरे गुणस्थान में कोई भी जीव मरण नहीं करता, ये स्वाभाविक परिस्थिति है। और जिसमें मरण करता है वहां पर मरण करता ही है, वो भी स्वाभाविक परिस्थिति है, मर सकता है, पर कहां मरेगा ये निश्चित नहीं रहता, पहले में मरेगा कि दूसरे में मरेगा कि ऊपर के किसी मरण गुणस्थान में मरेगा, निश्चित नहीं रहता। जो जो मरण के गुणस्थान हैं उसमें कहीं भी मरण कर सकता है, पर पुरुषार्थ के बल पर मरेगा, मरण के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ऊपर के गुणस्थानों में मरना चाहते हैं तो पुरुषार्थ चाहिए, पहले गुणस्थान में मरण करना चाहते हैं तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वो अनादिकाल से हो रहा है, चालू है वो। तो अनादिकाल से हमने जिस मरण को किया है वो मरण इन पांच में से कौन सा है, बाल बाल मरण, और हमने किया ही नहीं अनादिकाल से कभी। ऐसे मरण कौन कौन से हैं, नहीं और भी है ना, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, चार मरण नहीं किए हमने अनादिकाल से, चार मरण नहीं कर पाए, और चार मरण में से एक मरण भी हो जाए तो जीव का उत्थान प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष जाने का काल निकट माना जाता है। कम से कम बाल मरण तो करना ही चाहिए दूसरे नंबर का, तो हमारे भाव सीमित हो जाएंगे। तो बाल मरण किसको कहते हैं, इसको देखिए, अब चतुर्थ गुणस्थान में मरने वाले अविरत सम्यक दृष्टि चारों गति के जीवों का मरण, चारों गति में ये मरण हो सकता है। कौन सा मरण, दूसरे नंबर का मरण, सम्यक तो सहित मरण करना चारों गति में संभव है, क्योंकि सम्यक तो चारों गति में उत्पन्न हो सकता है, हो सकता हो, ये नियम नहीं, हो सकता है, पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद हम यदि मरते हैं तो उसका मरण, वो मरण कौन सा कहलाता है, बाल मरण कहलाता है। गुणस्थान कौन सा रहता है इसमें, चौथा, चौथा। श्रावक दशा में मरण करने के लिए कितने गुणस्थान हैं, श्रावक दशा में, गृहस्थ दशा में नहीं कह रहे हैं हम, श्रावक किसको कहते हैं, हाँ? फिर ये गुणस्थान कौन सा? फिर चौथा और पांचवा, चौथे में है तो पाक्षिक श्रावक, पांचवे में है तो नैष्टिक श्रावक। तो श्रावक दशा में मरण करने के लिए कितने गुणस्थान आपके हिस्से में आ गए? दो ही तो आ गए, श्रावक की अपेक्षा दो आ गए, चौथा और पांचवा। गृहस्थ की अपेक्षा से यानी सम्यक दर्शन रहित, उनके लिए कितने गुणस्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में सम्यक तो है ही नहीं। तो सम्यक तो रहित दशा में ये तीन गुणस्थान है, गुणस्थान तीन है उनके। पर ये मरण कर रहा हो तो इन तीन में से किस किस में मरण करेगा? पहले में और दूसरे में, दो में मरण करेगा, तीसरे में मरण है ही नहीं। सम्यक दृष्टि भी नहीं और उसमें मरण भी नहीं, सम्यक तो भी नहीं और मरण भी नहीं तीसरे में। ये हो गया बाल मरण। अब बाल पंडित मरण किसको कहेंगे? सम्यक तो सहित और देशव्रत युक्त पंचम गुणस्थान के मनुष्य और तिर्यंचों का मरण। देखो दो ही गति के जीव आ गए, मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों का मरण। तिर्यंच गति में कौन आ गए, कौन कौन आ गए? सौद्नी पंचेंद्री, बिल्कुल ठीक है, सौद्नी पंचेंद्री जीव ही आएंगे। पंचम गुणस्थान किसको होगा? सौद्नी पंचेंद्री जीव को ही होगा। और मनुष्य में तो सौद्नी असौद्नी होते नहीं, ये सौद्नी असौद्नी का भेद कहाँ? त्रिंच गति में ही है। देवों में भी सौद्नी असौद्नी नहीं होते, ऐसे भेद नहीं है। मतलब यानी मनुष्य नियम से सौद्नी है, देव नियम से सौद्नी है और नारकी भी नियम से सौद्नी पंचेंद्री है, पर वहां असौद्नी का भेद नहीं चलता। ये केवल त्रिंच गति में ही असौद्नी पंचेंद्री होते हैं। असौद्नी पंचेंद्री जीव को हो सकता है क्या? कौन सा पंचवा गुणस्थान? नहीं हो सकता। असौद्नी पंचेंद्री जीव को पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता, सौद्नी को ही होता है। तो पांचवा गुणस्थान प्राप्त करने वाला अनुवृत्ति कहलाता है। तो अनुवृत्त का धारण कितने गतियों में संभव है? दो गतियों में, मनुष्य गति में, त्रिंच गति में। देव अनुवृत्ति बन सकते, महावृत्ति बन सकते, भगवान बन सकते, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। पांचवे गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान है ही नहीं, पांचवे से लेकर चौदहवे तक कोई गुणस्थान देवों को है ही नहीं। नारकी जीव कितने गुणस्थान तक जा सकते हैं? चौथे तक, उनको भी नहीं है। त्रिंच गति में त्रिंच जीव कितने गुणस्थान तक चढ़ सकता है? पांच तक, वो भी कौन? सौद्नी पंचेंद्री। बाकी तो पहले गुणस्थान में ही रहते हैं, असौद्नी पंचेंद्री भी पहले गुणस्थान में ही रहता है, उसके गुणस्थान ज्यादा है ही नहीं। सौद्नी पंचेंद्री त्रिंच के गुणस्थान एक से पांच तक हो सकते हैं, प्राप्त कर ले तो, पुरुषार्थ करे तो पहले गुणस्थान से पंचम तक जा सकता है, पुरुषार्थ नहीं करे तो नहीं। ये हो गया। अब इससे तुलना करनी चाहिए अपने को, श्रेष्ठता की तुलना। त्रिंची को पांच गुणस्थान हो गए, मनुष्य को कितने हो गए? मनुष्य गति में कितने गुण स्थान है? 14 पूरे हैं, परंतु श्रावक अवस्था में कितने गुण स्थान है? श्रावक अवस्था में 4 और 5, और गृहस्थ अवस्था में, सम्यक्त्व रहित अवस्था में पहला, दूसरा और तीसरा, 3 गुण स्थान है। देव को अधिक से अधिक कितने गुण स्थान? 4। आपको अधिक से अधिक कितने गुण स्थान श्रावक दशा में? 5 तक। अब गुण स्थान यानी गुणों का स्थान, गुणों में आगे कौन है? श्रावक है, गुणों में आगे है श्रावक, और देव गुणों में पीछे, एक गुण स्थान नीचे है, वो भी सम्यक दृष्टि है, और पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक भी सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती कोई श्रावक पंचम गुण स्थान में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करने की पात्रता देव में है या मनुष्य में है? मनुष्य में है। तो देव को मनुष्य ये समझ ले कि हमसे ये श्रेष्ठ है, कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। अरहंत की वाणी से बहुत बड़ी भूल हो जाएगी ना। अरहंत भगवान ने कहा तुम तो परमात्मा बन सकते हो, और देवों से कहा तुम परमात्मा नहीं बन सकोगे, परमात्मा की पूजा भर कर सकते हो। ये परिस्थिति है देवों के सामने कि वो केवल पूजक ही बन सकते हैं, पूज्य नहीं बन सकते। सेवक, सेवक, सेवा भी नहीं चलती, आहार नहीं लेते हम क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कहा शुद्धि इनकी नहीं होती, सेवा भी क्या करेंगे बोलो। हाँ हाँ, व्यवस्था, हाँ व्यवस्था करते हैं, बिल्कुल उतना तो कर सकते हैं, जगह बना के दे सकते हैं। समोसरण उनका जादू ही है, ये इसका उपयोग हमें भी होता है, त्रिंशों को होता है, और खुद उन सबके लिए भी होता है, देव के लिए, और अरहंत भगवान उनको को तो कोई मतलब है ही नहीं, वो कमल के ऊपर भी नहीं बैठते, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करते ही आकाश में स्वयं चले गए थे, और उसके नीचे इसकी रचना इन्होंने कर ली, और उसमें तो बैठे नहीं, वो जहां है वहीं है, उसके नीचे समोसरण की रचना कर ली। तो अरहंत भगवान की सेवा क्या की? सेवा कुछ नहीं, उनकी कुछ सेवा की जरूरत ही नहीं, उनकी सेवा की जरूरत ही नहीं, हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं, नीचे बैठकर अपने लिए ही व्यवस्था बना रहे हैं, हमको बैठना है इसलिए जगह बना रहे हैं, हमको सुनना है इसलिए जगह बना रहे हैं, जैसे यहां हो रहा है, स्टेज बना दिया, काय के लिए बनाया? सब खुद के लिए, हॉल बनाया खुद के लिए, समोसरण भी बनाया खुद के लिए, महाराज के लिए क्या बनाया? महाराज के लिए क्या बनाया? ये भी आपके लिए, पुस्तक भी आपके लिए, क्या बनाया? कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ जो व्यवस्था है, ये आपके लिए, आपके प्रति आपकी व्यवस्था है, ये व्यवस्था सब स्वयं के लिए है। ये पाटा भी लगा दिया क्योंकि हमको अच्छी तरह से सुनना है, इसलिए ऊंचा बनाओ, तो ये भी आपके लिए हुआ। अब हम केवल बैठे हैं आकर के, ऐसे भगवान को वहां होता है, भगवान को किसी से मतलब ही नहीं है। आपका पुण्य का योग है, पुण्य का बल है तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, पुण्य का बल नहीं है तो कितना भी निवेदन करते रहो भगवान मौन है, मौन है। भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्यों नहीं खिरी? पुण्य का योग किसी का आ ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ा पुण्य का योग तो वहां गंधर्व परमेष्टि होना चाहिए था, वो नहीं थे, इसलिए दिव्य ध्वनि 66 दिन तक केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं खिर पाई। यानी 66 दिन तक नुकसान हुआ आपका, पहले दिन ही उपदेश सुनने के लिए मिलना था लेकिन 66 दिन तक मौन रहे, नुकसान तो हो गया आपका। समो शरण बन गया, सब कुछ बन गया, अब नुकसान होता जा रहा है, होता जा रहा है। सभी लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं, क्यों उपदेश नहीं हो रहा है, क्यों उपदेश नहीं हो रहा है। किंतु पुण्य भी तो चाहिए, सुनने वालों का पुण्य नहीं है तो वो नहीं सुनने, सुनने को मिलने वाला नहीं है। सुनाने वाले बैठे हैं, सुनने वाले आए हैं, पर पुण्य साथ नहीं दे रहा है तो कार्य सिद्धि नहीं होती। बड़ा रहस्य है ये कर्म सिद्धांत, बीच में देखो दिखता तक नहीं है और लेकिन काम करता रहता है, ऐसा होता है। तो भगवान हम बन सकते हैं, हम में श्रेष्ठता अधिक है, देवों को श्रेष्ठ समझना अपने से ये बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है। देव पांव पड़ करके आपकी रक्षा, आपकी सेवा, आपको ऊपर उठाने के लिए वो आता है, श्रेष्ठ है इसलिए आता है ना। ये पागल मनुष्य क्या करता बेटा है, देवों को ही ऊपर उठाता बेटा है ये, हाँ? पागलपन है कि नहीं? कितना बड़ा पागलपन है। जिनवाणी से हम कितने दूर हैं, उनका विचार नहीं करते। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, विवेक की बातें, स्वाध्याय न होने के परिणाम स्वरूप किसी को कुछ समझते, हम अपने आप को कुछ समझते हैं और देवों को कुछ और समझते हैं। दक्षिण में बहुत अंधकार है, इतनी श्रद्धा गहरी हो चुकी है उस देवी देवता के प्रति कि वो अपने से महान ही समझते हैं। वो बोलो कहां है इनको जिनवानी का ज्ञान, कहां है गुणस्थान का ज्ञान, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ, कौन किसकी पात्रता कितनी कितनी नहीं। और विशेष करके महिलाओं में बहुत गहरा कर चुका है ये, वो कुछ सोचती ही नहीं है, कुछ स्वाध्याय ही नहीं करती। जिनेंद्र भगवान की वाणी से बहुत दूर है महिलाएं और फिर भी जैन, नकली जैन। असली बन रहे हैं, अब तो बन गए, असली जैन किसने बनाया? जिनेंद्र भगवान की वाणी ने बनाया, इसके पास आ गए इसलिए मिल गया। अगर इसको कानों से न सुनते हुए वहीं बैठे रहते फिर अज्ञानी ही रहते, जहां का तहां, देव बड़े हम छोटे, वो महान और हम कुछ नहीं।
हमारा
ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिन वाणी के प्रति, ऐसा सम्यक ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान जीवन में आने पर ही कल्याण प्रारंभ होता है। तब तक अंधकार है, अमावस्या है, तब तक अमावस्या ही है, कभी पूर्णिमा आई नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में मरण जो होता है उसका नाम बाल मरण, पंचम गुण स्थान में जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण। और देखो पंडित मरण का स्वरूप, रत्नत्रय धारी संयमी मुनियों का मरण, अर्थात गुणस्थान 6 से 11वें गुणस्थानों में होने वाला मरण पंडित मरण कहलाता है। पंडित मरण करना हो तो किस गुणस्थान में मरण करना पड़ेगा? 6 से 11 तक कहीं भी एक गुण मरण तो एक ही गुणस्थान में होगा, कहीं भी एट ए टाइम में सब में मरण नहीं कर सकते, किसी एक में, छठे में या सप्तम में, आठवें में, कहीं भी एक जगह मरण होगा। तो उन गुणस्थानों में मरण हो गया तो पंडित मरण कहेंगे उसको, उसको पंडित मरण कहेंगे। 6 से 11वें तक होने वाला मरण पंडित मरण, इसको समाधि मरण व संलेखना मरण भी कहते हैं। इस संलेखना मरण के या समाधि मरण के 3 भेद हैं। पहला वाला भक्त प्रत्याख्यान मरण, दूसरा वाला इंगिनी मरण, तीसरा वाला प्रायोपगमन मरण। ये 3 भेद हैं, ये 3 मरण हैं। थोड़े इस संबंध में पहले समझाते हैं। भक्त प्रत्याख्यान पहला वाला है, जिस मरण में साधु बाह्य व अभ्यंतर 24 परिग्रहों का त्यागी रहते हुए आहार पानी आदि को क्रमशः कम करता हुआ शरीर को छोड़ता है और अपनी वैयावृत्ति अपने हाथों से भी कर सकता हो, दूसरे से भी करवा सकता हो, उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। देखो भक्त प्रत्याख्यान पहले नंबर के स्मरण को करना हो तो इसमें छूट है दो बात की। एक तो यह है कि आहार पानी आदि को क्रमशः त्याग करना, ये तो स्वाभाविक कॉमन बात है, समाधि मरण के टाइम में सभी करते हैं। वैयावृत्ति के संबंध में दूसरे से भी हम करवा सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं, अपने हाथ से कुछ हो गया तो अपन भी अपने हाथ से वैयावृत्ति, जैसे बाधा हो गई तो बाधा को हटा सकते हैं, सिर दर्द होने लगा सिर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करेंगे कर सकते हैं, परंतु यही कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकेंगे। आगे के मरणों में कौन से मरण? इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। वहां देखो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो इंगिनी मरण में स्वयं की वैयावृत्ति स्वयं तो कर सकते हैं लेकिन दूसरे से करवा नहीं सकते, दूसरे का हेल्प नहीं ले सकते, उठने के लिए, बैठने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए सेल्फ डिपेंड होकर के ही सब कुछ करना, किसी का सहारा नहीं लेना, और सहारा देने के लिए आता है तो उसको मना करना, इंगिनी मरण में ऐसा है, दूसरे से नहीं करवा सकते, स्वयं करवा सकते, यानी स्वयं उठ सकते, स्वयं जा सकते, स्वयं आ सकते, स्वयं कहीं दर्द हो रहा हो तो उसको दबा सकते, अपने हाथ से सब कुछ करना, ये भी एक साधना है, ये भी एक ढंग है, पद्धति है, निर्मोह होने की पद्धति। अंत अंत में स्वयं के हाथ से व्यावृत्ति स्वयं नहीं करवा सकते हम, वो परिस्थिति आ जाती है। दूसरा कोई कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, उसी का पहले त्याग किया जाता है। दूसरा कभी भी कर सकता है, मरण के बाद भी उठा करके उसको ले जाता है, तो कभी भी कर सकता है। लेकिन स्वयं कब तक हम कर सकते हैं? जब तक शक्ति है। शक्ति खत्म हो गई तो अपनी तरफ से छूटती है, यानी स्वयं की व्यावृत्ति पहले छूटती है कि पर की? नहीं, पर की छोड़ने योग्य तो पर का है। पहले प्रथम पर की व्यावृत्ति से छुटकारा पाना और फिर स्वयं की व्यावृत्ति को भी रोकना क्रम है। दूसरे के द्वारा जो होती है व्यावृत्ति उसका त्याग करते हैं, फिर बाद में अपने हाथ से अपन त्याग करते हैं, तो ये त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं, ये विचार होता है। अगर त्याग करने की शक्ति है तो अपने हाथ से भी अपनी व्यावृत्ति का त्याग करते हैं। देखो कैसी साधना है, कठिन है, बहुत कठिन है। अब देखो लाश अपने तरफ से भी त्याग करना ये कठिन है। जो कठिन है वो बाद में छूटता है और जो सरल है वो पहले छूटता है। अनावश्यक हिंसा, जैसे वहां कहा था, अनावश्यक हिंसा पहले छूटती है। आवश्यक हिंसा क्योंकि छोड़ना बहुत कठिन है उसको, वो धीरे धीरे छूटती है। जल को छान करके पीना चाहिए, छान करके ही पी रहे हैं। अनछना जो पीते हैं वो अनावश्यक हिंसा है, वो अनावश्यक रूप से हिंसा कर रहे हैं। छान करके जो पीते हैं वो आवश्यक हिंसा कर रहे हैं, अनावश्यक से बच रहे हैं। छान लिया, अनावश्यक आवश्यक रूप से जो हिंसा होती थी, अनावश्यक रूप से हिंसा होती थी, उससे बच गए हम। अब पानी पीना है तो पीना तो हिंसा है ही, एक इंद्रिय जीव की हिंसा है उसमें, तो पानी को भी त्यागना ये कब? संलेखना के टाइम पानी भी छूट जाता है। पहला क्या छूटता है? छान, जीवानी को छोड़ करके, छान करके, दया करके पीना। पी रहे हैं तो एक इंद्रिय जीव पानी को पी रहे हैं, उसमें भी हिंसा है। त्रस्त जीवों की रक्षा पहले की, स्थावर जीवों की रक्षा नहीं कर पाई, पानी तो पीना ही पड़ा। पर इसको भी छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ सकते। कब? संलेखना के टाइम में पानी भी त्यागना, आहार लेना, पानी पीना, चलना, ये सब शरीर की ही व्यावृत्ति है। इसको भी त्यागा जाता है। शरीर भी परिग्रह है, आहार भी परिग्रह है, ये आवश्यक परिग्रह, आवश्यक जब तक है तब तक परिग्रह नहीं। अनावश्यक जो था जीवन में, जिसके जिसका न होने पर भी हमारा चल सकता है, उसको तो त्याग दिया। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह त्याग दिए, वो अनावश्यक लग गए, अनावश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया। पर आहार तो लेना पड़ रहा है, शरीर की व्यावृत्ति करनी पड़ रही है, शरीर परिग्रह है, आहार लेना भी परिग्रह है। आत्मा, आत्मा है, उसको पर वस्तु परिग्रह ही है। शरीर पर वस्तु है, आहार पर वस्तु है, आत्मा को ये सब पर वस्तु तो है, पर वस्तु का ग्रहण ही परिग्रह है। कैसा है देखो परिग्रह की परिभाषा। आत्मा को छोड़कर बाकी जो भी है वो परिग्रह ही है। आठ कर्म जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा में है ये भी परिग्रह है, ये भी परिग्रह, कर्म भी परिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? केवल आत्मा को बचाओ, वही अपरिग्रह है। हाँ, वस्तुतः एकदम पर पदार्थ से ही रहित, कर्मों से, शरीर से, बाहरी वस्तुओं के ग्रहण से रहित यदि कोई आत्मा है तो सिद्ध भगवान है। परम निर्ग्रंथ वही है, अपरिग्रही। अरहंत भगवान भी अपरिग्रही नहीं। हाँ, अरहंत भगवान का क्या क्या छूट गया देखो। 10 परिग्रह छोड़ दिया, मुनि बन गए, आहार भी अनावश्यक हो गया, भूख प्यास नहीं है अरहंत को, तो वो भी विकल्प चला गया। किंतु शरीर और कर्म साथ में है अभी, और ये शरीर बाहर से तो ग्रहण किया है, ये बाहर पुद्गल परमाणु, ये आत्मा तो है ही नहीं, अपना तो है ही नहीं, आत्मा का तो है ही नहीं, ये बाहरी पुद्गल को ग्रहण किया है। शरीर बाहरी पुद्गल है, ये ग्रहण हमने किया है। कर्म वो भी पुद्गल परमाणु है, उनको भी हमने ग्रहण किया है। जो जो ग्रहण किया जाता है वो सब परिग्रह। छोड़ो, क्या क्या छोड़ते छोड़ते जाओ। इसलिए कहा है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन हैं। और चारित्र कब प्रकट होता है? परिग्रह मुक्त होने पर। और यह चारित्र देखो, मुनि महाराज चारित्र को ग्रहण करते छठे में, लेकिन इनका चारित्र पूर्ण नहीं है अभी। चारित्र की पूर्णता आती है 14वें गुणस्थान में। मोक्ष मार्ग, मार्ग जिसको बोलते हैं ना, गुणस्थान का नाम ही मार्ग है। ये मार्ग है, पहले से लेकर 14वें तक जो गुणस्थानों की व्यवस्था है ये मार्ग कहलाता है। इस मार्ग में मोक्ष मार्ग कहां से शुरू होता है? तो कहते हैं छठे गुणस्थान से शुरू होता है मोक्ष मार्ग, छठे गुणस्थान से शुरू होता है। और उस मार्ग का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही मार्ग है, ये तीनों मिल करके मार्ग बनता है, तीनों मिलने पर मार्ग। और ये छठे से प्रारंभ हो गए, तो छठे में जो सम्यक चारित्र है वो पूर्ण है क्या? हाँ, छठे में जो सम्यक चारित्र है वो पूर्ण है क्या? नहीं है। तो सम्यक चारित्र की पूर्णता कहाँ होगी? 14वें गुणस्थान में, लास्ट के गुणस्थान में। जिस क्षण चारित्र पूर्ण होगा उस क्षण जो बचा परिग्रह था वो भी निकल जाएगा। क्या बचा था? शरीर बचा था। और क्या बचा था? कर्म। कौन से कर्म? अघाती कर्म। घाती तो पहले नष्ट कर चुके थे, अब बचे थे कौन? अघाती कर्म। अघाती कर्म और शरीर दो ही बचे थे, दो। चारित्र जैसा ही उन्होंने पूर्ण कर लिया 14वें में जा करके, वो पूर्ण होते ही ये दोनों छूट जाते, शिखर पर चढ़ गए। ये 14वें तक मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग 14वें तक है, 14वें तक। सिद्ध बनने के बाद मार्ग नहीं, वो तो मंजिल है। जब तक मार्ग होता है तभी तक गुणस्थान गिने जाते हैं। क्या कह रहे? जब तक मार्ग होता है तभी तक गुणस्थान है। मार्ग खत्म हो गया तो गुणस्थान में रहता ही नहीं जीव, तो कहां जाता है? सिद्ध अवस्था में जाता है। सिद्धों को कौन सा गुणस्थान? कोई सा भी गुणस्थान नहीं, सिद्धों को कोई गुणस्थान होता ही नहीं, इसलिए सिद्ध कहते हैं। सिद्ध सिद्ध हो गए, सब कार्य सिद्ध कर लिया, सब कार्य जो करना था सिद्ध हो गया। सिद्ध परमात्मा की अवस्था, उनको सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध भगवान कहते हैं उनको, इसलिए उनका नाम सिद्ध 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 पड़ा। सब ओर से सिद्ध है, वो जो करना था सब कर लिया, सिद्ध हो गए। अब देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन थे। कहां से शुरू हो गए थे तीनों? ये छठे गुणस्थान से, और ये क्रमशः इसमें वृद्धि होती जाती है। सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तेरहवें में जाते ही ज्ञान केवल ज्ञान हो जाता है, और ये मति ज्ञान, स्वत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर कुछ नहीं रहता, ये सब कन्वर्ट केवल ज्ञान के रूप में, अनंत ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाते। तो ज्ञान की पूर्णता कहाँ है? तेरहवें में। केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान अपूर्ण ही है। केवल ज्ञान हो गया कि ज्ञान की पूर्ति हो गई। तो सम्यक ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, सम्यक ज्ञान कौन सा है? तेरहवें गुणस्थान का केवल ज्ञान, वही सबसे बड़ा सम्यक ज्ञान है। है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सम्यक्त्व के साथ होने से इनको भी सम्यक ज्ञान कहा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को भी सम्यक्त्व के साथ होने से इनको सम्यक ज्ञान कहा, और यही दोनों मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो मिथ्या ज्ञान कहा, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान कहा। सम्यक दर्शन के साथ इसके संगति में आ जाते हैं तो सुमति, सुश्रुत ज्ञान कहा, सुअवधि कहा। मिथ्यात्व के साथ हो तो कुअवधि, मना परे ज्ञान, ये तो मिथ्यात्व के साथ होता ही नहीं, मुनि अवस्था में होता है, तो ये भी सम्यक ज्ञान है, मुनियों में पाया जाता है। तो ये तीन ज्ञान तो पहले गुणस्थान में भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान पहले में भी रहते हैं। यदि पहले में है तो इनको कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुज्ञान कहेंगे, और सम्यक्त्व के साथ चौथे में यदि हैं या पांचम में हैं तो उनको सुमति, सुश्रुत, सु अवधि कहेंगे। और इन ज्ञानों का अस्तित्व, सुमति, सुश्रुत, सु अवधि, इन ज्ञानों का अस्तित्व किस गुणस्थान तक है? सुज्ञान। सुज्ञान का अस्तित्व कहां से कहां तक है? तो चौथे से लेकर बारहवीं तक है, बारहवीं तक। और मना परे ज्ञान का अस्तित्व कहां से कहां तक है? मना परे ज्ञान का अस्तित्व छठे से बारहवीं तक। हाँ, ये छोटे ज्ञान कहलाते हैं चारों, मति, श्रुत, अवधि, मना परे, छोटे हैं ये। सबसे बड़ा केवल ज्ञान, वो किस गुणस्थान में प्रकट होता है? तेरहवें में, तेरहवें में। यही अनंत ज्ञान कहलाता है। ये अनंत नहीं, ये तो सीमित ज्ञान है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होता। सब लोक अलोक को, सब अनंत विषय को भी कैच करता है, इतना पावरफुल है ये। इसकी रेंज असीम है, ये ऐसा टावर जिसके रेंज कहां तक है या अंत नहीं लगा सकते। हाँ, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये भी चार टावर हैं, लेकिन इसकी रेंज बहुत सीमित है, बहुत सीमित है, ये ज्यादा पकड़ नहीं सकते, बाहर का ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा है। केवल ज्ञान जो है वह महत्वपूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान अगर हो गया तो ज्ञान की पूर्णता हो गई। रत्नत्रय तीन है, ज्ञान की पूर्णता कहां होगी? तेरहवें गुण स्थान में। केवल ज्ञान होने पर ज्ञान पूर्ण हो गया। सम्यक दर्शन की पूर्णता कहां होगी? तेरहवें में ही, क्योंकि वो भी चौथे से बढ़ता 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 प्राउढ़ होता हुआ तेरहवें तक पहुंचता है, तो तेरहवें में पूर्ण होता है। तो दो रत्न, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो रत्न तो पूर्ण हो गए तेरहवें गुण स्थान में। अब एक रत्न चारित्र का, ये कहां पूर्ण होगा? चौदह में। चौदह में ही क्यों पूर्ण हो रहा है ये? क्योंकि अभी परिग्रह है इसलिए पूर्ण नहीं है वो। जब तक परिग्रह रखेंगे तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। तो परिग्रह अभी है, शरीर परिग्रह है और आघाती कर्म परिग्रह, दो परिग्रह अभी है इसलिए पूर्ण नहीं है। तो दोनों का विसर्जन जब होता है तब उनको पंडित पंडित मरण होता है। शरीर को तो त्याग रहे मोक्ष जाते समय, तो वो भी तो मरण है। वहीं तो मनुष्य आयु कर्म समाप्त होता है, आयु कर्म तो है वहां। मनुष्य आयु कर्म समाप्त करने के साथ साथ अन्य कर्मों को भी समाप्त करते हैं, और आयु कर्म समाप्त हो गया तो आत्मा इसमें शरीर में रहेगा नहीं। आयु खत्म हो गई तो आत्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलते ही चारित्र पूर्ण होते ही आत्मा बाहर निकल जाती है। जिस क्षण में चारित्र पूर्ण हो गया वहां तक मार्ग है बस, उसके बाद मंजिल है, उसके बाद सिद्ध अवस्था है, उसके बाद सिद्ध परमात्मा दशा है। ये कैसा है देखो, ये वहां तक जाना है शिखर तक। अभी क्या छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सब छोड़ने लायक ही है। जो दिख रहा है सब छोड़ने लायक है, सभी परिग्रह है, और ये जीव छोड़ नहीं पा रहा है। किस कारण से? मोह के कारण से। मोह 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 के कारण से ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको कैसे छोड़ सकते हम? ये भी चाहिए। संग्रह करता हुआ जाता है, संग्रह करता हुआ जाता है। आत्मा दब रहा है नीचे, परिग्रह के नीचे घबराता है, छोड़ते समय घबराता है। छोड़ूंगा तो क्या होगा, छोड़ूंगा तो क्या होगा, घबराता है। घबराने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं, जितने छोड़ सकते हैं उतना छोड़ना ही चाहिए। जो अनावश्यक रूप से रखे हैं उनको तो छोड़ो। अनावश्यक जो जो लग रहा है उससे निवृत्त हो जाओ, निर्मोही हो जाओ। तो इसको कहते हैं आत्मरुचि, अपने प्रति रुचि। आत्मरुचि चाहिए, जिसको आत्मरुचि जितनी बढ़ती है ना उतना ही मोह गिरता है। जिसका जितना जितना आत्मरुचि अधिक होती है उतना उतना मोह गिरता जाता है। जिसके पास जितनी रुचि नहीं है उतना ही वह मोही है, जितना रुचि है उतनी निर्मोही है। आत्मा कहता ही है छोड़ो इसको, छोड़ो, कल्याण तो करना है अपने को, क्या मोह करना है हमसे, बाह्य वस्तु तो है, क्या इसके पीछे पड़ना। चिंतन तो करता है, उसको अपनी चिंता है भगवान बनने की, संसार से मुक्त होने की उसको चिंता है। करता जाता है, जितनी शक्ति है उतना करता जाता है। वहां ले जाना है, ले जाना है क्या? आप अगर नहीं छोड़ते तो वस्तु पदार्थ परिग्रह ये कहता है कि तुम नहीं छोड़ते तो तुमको ही मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ता ही है वो। उसको हम जिंदे रहते रहते जीवन में जीते जी उसको हम नहीं त्यागते हैं तो वो तो तुमको त्याग ही देता है और अकेला भेज देता है, मैं नहीं आ रहा हूं तुम अकेले जाओ। और आत्मा ही अकेली जाती है, एक पैसा भी साथ में नहीं ले जाता। जाओ अकेला, यहां एक परमाणु भी नहीं ले जा सकते, खबरदार अकेले जाओ। मोही, मोही कहां का, जा अकेला, मुझे नहीं छोड़ा तुमने, तुझे मैं छोड़ देता हूं, जबरदस्त भेज देता हूं। रोते 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 ही जाता है वो अंत में भी, बिल्कुल अंत में रोते रोते जाता है कि मैं ये छोड़ना पड़ रहा है, मेरा छूट रहा है, ये सब कौन देखेगा, वो कौन देखेगा, हाँ इतना जमा है, रोता रोता उसको छोड़ के जाता है। यानी मोह रख करके चला गया, अब ये मोह ही मोह रख करके चला गया तो क्या ये समाधि मरण कहलाएगा? नहीं, ये दुर्मरण है। मोह छोड़े बिना अगर मर गए तो ये दुर्मरण ही है, ये दुर्गति में ले जाएगा। उस मोह के कारण से हम दुर्गति में जाकर के पहुंच गए, मोह मोह के कारण। कम से कम अंत में तो छोड़ते, काहे को रोते हुए बैठे थे? कुछ होना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं किसी से, और तुम आओ मैं जा रहा हूं, ये तो मोह ही तो है, किसी को नहीं बुलाना। देखो मरण के टाइम में आचार्य ने कहा है पांच गलत, ये दोष हैं, पांच दोष हैं, इन दोषों से बचना, पांच अपराध से बचना। क्या क्या? जीवित, मरण, जीवित मरना संशा, जीवित मरण यानी जिंदा रहने की भी अपेक्षा नहीं रखना और मरण की अपेक्षा भी नहीं करना, सहज जीना। मैं जरा अभी जी लूं, चार दिन और बचूं, ये भाव भी नहीं, जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है, ये भाव भी नहीं। ये दोनों दोष हैं, मरने की इच्छा करना भी दोष और जीवित रहना भी, रहने की इच्छा करना भी दोष। तो जीवित मरना संशा, आशंशा यानी इच्छा, जीने की इच्छा और मरने की इच्छा करना, ये दोनों दोष। और क्या? मित्रानुराग, इससे तो बच गए, जीवित भी नहीं, जीवित की इच्छा भी नहीं रखेंगे और मरण की भी इच्छा नहीं रखेंगे, लेकिन मित्रों को बुलाएंगे, आओ जा रहा हूं अंतिम में मिलो, अंत में मिलो तो जा रहा हूं, संलग्न ले चुका हूं। नहीं, किसी मित्र को नहीं बुलाना, बंधुओं को, मित्रों को, परिवार को, बेटे को, बेटी को, किसी को नहीं बुलाना। मरण करने वाले का ये कर्तव्य है, वो आते हैं, बात दूसरी, वो उनकी इच्छा से, उनकी आशा से, उनके मोह से वो आते हैं आपके पास, परंतु आप नहीं बुलाओगे। आप इतना निर्मोही हो जाओ उनसे कि वो दिख रहे हैं लेकिन वो मेरे नहीं, उनके पर कोई भी मोह नहीं, ऐसा रहो अंत में, हाँ मोह निर्मोही रहो, अंत में निर्मोही रहना चाहिए। वो आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है, कोई सेवा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना। ये मेरे नहीं, मेरे शरीर के लिए, ये मेरे शरीर के संबंधी हैं, मेरे शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरे शरीर के संबंधी कैसे, ये दूसरे के संबंधी हैं, दूसरे को देख रहे हैं, दूसरा कुछ कर रहे हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं मेरा हूँ, शरीर मेरा नहीं, कर्म मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, धन संपत्ति मेरी नहीं, सब अलग है, सब अलग है। ऐसी भावना भाते हुए अगर मरण किया तो इसी को सच्चा संलेखना मरण, समाधि मरण कहते हैं। ऐसा मरण करना चाहिए, और ऐसा मरण करने की यदि इच्छा है तो संस्कार डालो, अभिषेक संस्कार डालो आत्मा पर। ऐसा संस्कार डालो निर्मोहता की चिंता, चिंतन ज्यादा करो, ये मेरे नहीं, हर पल सोचो ये कोई वस्तु मेरी नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, ये बेटे मेरे नहीं, ये संस्कार डालना पड़ेगा। और बार बार चिंतन किए बिना क्या ऐसा लास्ट में एकदम एग्जैक्ट लास्ट में जाकर के ऐसे भाव आएंगे, अभी से शुरुआत करना पड़ेगा। संलिंग न हो गई तो स्त्रीलिंग छेद गया, हाँ चिंता मत करो, स्त्रीलिंग 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 भी पर है, उसको भी छोड़ दिया तो वो क्यों मिलेगा। हाँ स्त्रीलिंग भी पर है क्या, नहीं, शरीर स्त्रीलिंग है, इस शरीर से ही मोह छोड़ दिया तो लिंग रहित हो गई आत्मा, उसको कोई लिंग की अपेक्षा नहीं है तो लिंग मिलने वाला ही नहीं, न पुल्लिंग मिलेगा, न स्त्रीलिंग मिलेगा, न नपुंसक लिंग मिलेगा, कोई लिंग नहीं, सब तीनों का ही छेद हो जाएगा। संलेखना के टाइम में ये भी विकल्प नहीं रखना, क्या मैं स्त्री हूं, ये विकल्प भी नहीं आना चाहिए, मैं पुरुष हूं ये भी नहीं, मैं नपुंसक हूं ये भी नहीं, ये शरीर मेरा, मेरा शरीर ऐसा है ऐसा भी नहीं, मेरा शरीर क्यों कह रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा रत्नत्रय के अलावा चौथी वस्तु कुछ भी नहीं है तो क्यों कह रहे हैं मेरा शरीर मेरा, वो मेरा, मेरा ये टाइटल हटाओ तब सब हो जाएगा। वस्तु के पीछे मेरा मत लगाओ, ये किसी का होता नहीं है, ये अनादिकाल से संसार में है, ये अपने स्वरूप से है, इसको उठा करके अपना बना लेते हैं, इसको उठा लेते हैं अपना बनाते हैं और मेरा जोड़ देते हैं उसको मेरा जोड़ देते हैं, कितना गलत है। जो पर है वो मेरा कैसे हो सकता है, मेरा तो एकमात्र आत्मा है, उसमें जो गुण है वो मेरे हैं, उसको न तो हम दे सकते हैं न ले सकते हैं, उन गुणों को, आत्मा के गुणों को ले सकते दे सकते, किसी के पर के गुणों को ले भी नहीं सकते, स्वयं के गुणों को दे भी नहीं सकते, जो लेन देन नहीं होता जिनका, वो है मेरा। आत्मा मेरा, आत्मा के गुण मेरे, इसको लगाओ, ये टाइटल ठीक है, इसके लिए मेरा शब्द लगाओ, आत्मा मेरा, आत्मा के गुण मेरे। हाँ परंतु इन आत्मा को, आत्मा के गुणों को छोड़ करके बाकी कुछ मेरे नाम का कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। देखो अनादिकाल से कितना अंधकार रहा है अपने जीवन में, हा? मेरा खुद का पता नहीं, खुद आत्मा हूं ये भी पता नहीं, आत्मा में जो गुण है वो मेरे हैं ये भी पता नहीं, और मेरे 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 कहते हुए मर रहे हैं, वो किसको मेरे मेरे कहते मर रहे हैं, पर को, पर को। कितना अज्ञान अंधकार है ये, कितना अंधकार है, अमावस्या है ये, भयंकर अमावस्या। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने पर ही साधना संभव है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, ये दो बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए बाकी सब काम हो जाता है, वही तो मालूम नहीं है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा में रहने वाले गुण मेरे हैं और बाकी तो कुछ मेरा नहीं है, ये मालूम ही कहाँ था? ये मुख्य ज्ञान है, मेन, वही मालूम नहीं। तो मेरे 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 मरे 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 उसी में मरे, मेरे मेरे कहते हुए मरे, ऐसा होता है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम इतना मजबूत रखना चाहिए विषय को, मैं आत्मा हूं और मेरे आत्मा में जो गुण हैं, रत्नत्रय गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो ही मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं। मजबूत बनाओ इसको, संलेखना मरण आसानी से हो जाएगा, ना चाहते हुए भी संलेखना हो जाएगी। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, संलेखना हो रही क्या नहीं ये देखने की जरूरत नहीं। सावधान रहो, मैं आत्मा हूं, ये जो गुण हैं आत्मा के वो मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है, ऐसा कहते कहते प्राण छोड़ दो, तुम्हारे तीनों लिंग छिद गए और मोक्ष में जाओगे। स्त्रीलिंग को छेद करके क्या पुरुष लिंग को रखना चाहते? अरे ये भी तो छेदने की चीज है, नवे गुण स्थान में छिद जाता है ये शरीर की अपेक्षा से, 14 गुण स्थान में छिद जाता है। समझ में आ गया ना? नवे गुण स्थान में ये छिद जाता है, पुरुष शरीर अब कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और भाव की अपेक्षा से स्त्रीवेद, पुरुषवेद, भाव भाववेद जो है नवे गुण स्थान में छिद जाता है, एक नवे में एक 14 में, सबको छेदना तो है ही। मुझे स्त्री पर नहीं चाहिए, पुरुष पर चाहिए, ये भी परिग्रह ही हो गया। मैं काय मानता तुम्हें? पूरी बात समझो, पूरी नहीं समझोगे तो ये नहीं चाहिए और यही चाहिए, वो तो परिग्रह बन जाएगा। वो भी सभी परिग्रह है, सभी परिग्रह है। पुरुष वेद भी कहाँ ठीक है, इसको भी त्यागना। हाँ ये बात अलग है कि मोक्ष सिद्धि के लिए पुरुष पर्याय से ही मोक्ष सिद्धि संभव, इसलिए साधन की अपेक्षा से जब तक हम नहीं पाते हैं मोक्ष को तब तक ये आवश्यक है। हाँ वो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो ये तो चाहिए ही, हमेशा ही चाहिए कहोगे तो ये भी परिग्रह बन जाएगा। पुरुष पर्याय भी हमेशा हमें नहीं चाहिए, कोई वेद नहीं चाहिए, शरीर ही नहीं चाहिए अपने को। शरीर मुक्त दशा, ये मेरी ओरिजिनल अवस्था है, वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन करने से संलेखना मरण अवश्य हो सकता है। संलेखना मरण एक बार हुआ तो आपके 8 भाव बचते हैं, 8 भाव तक ये कोई ना कोई वेद आएगा आपके साथ, लेकिन उसमें नपुंसक पर्याय नहीं मिलेगा और स्त्री पर्याय नहीं मिलेगा, केवल पुरुष पर्याय में आना जाना रहेगा। स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, 8 बार शरीर धारण करना पड़ेगा पुरुष शरीर, उसके पश्चात नियम से उस पुरुष शरीर रूपी परिग्रह को भी त्याग कर निर्वाण की उपलब्धि करेंगे। ये महावीर भगवान क्या पुरुष पर्याय को ले गए शुद्ध अवस्था में? नहीं, पुरुष पर्याय को भी त्याग दिए, ये भी परिग्रह। पर्याय संसार है, आत्मा मोक्ष है। पर्याय मात्र परिग्रह है, संसार है, भटकन है, जन्म मरण है, सब को ही त्यागना है। समय हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।